Recording in
الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا وذكر به أن تبصل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها أولئك الذين أبصلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا زدنا علما. اس کلاس میں ہم سورہ انعام کی تفسیر پڑھتے ہیں. معارف القرآن جلد نمبر 3 ہماری ریفرنس بک ہے اس کے لیے. اور جو آیات ابھی تلاوت کی گئیں یہ مجموعہ آیات ہے، آیات نمبر 68 سے 73. ٹھیک ہے، تو ہم ان کے معروف و مسائل پڑھ رہے تھے پچھلی کلاس میں، اور ہم نے اس آیت کے تحت یہ تفسیر پڑھی تھی کہ اللہ تعالیٰ جو ارشاد فرماتے ہیں ایمان والوں کو خطاب کرتے ہوئے کہ وذر الذین اتخذوا دینہم لعبا ولہوا، کہ تم چھوڑ دو ان لوگوں کو جنہوں نے اپنے دین کو کھیل اور تماشا بنایا ہوا ہے. اور اس حال میں کہ اور ان کی حالت یہ ہے کہ وا وا کا جو لفظ ہے نا واو، تو یہ حالیہ بھی اس کی ایک قسم ہوتی ہے واو کی، کہ جس کو اس طرح سے اردو میں ہم سمجھ سکتے ہیں کہ جیسے ہم کہتے ہیں کہ حال یہ ہے کہ، ان کا حال یہ ہے کہ غرت ہم الحیات الدنیا، کہ دنیا کی زندگی نے ان کو دھوکے میں ڈالا ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ حکم فرمایا کہ ایسے لوگوں کو چھوڑ دو، اور چھوڑ دو بھی کس لفظ کے ساتھ حکم فرمایا؟ ذر کے لفظ کے ساتھ، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے قرآن، یہ جو مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر میں لکھا کہ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ناراضگی کے ساتھ چھوڑ دینا. ٹھیک ہے، یعنی کسی چیز سے الگ ہو جانا. ایک تو ہوتا ہے نا آپ بڑے دکھ کے ساتھ الگ ہو رہے ہیں کہ بھائی بڑا افسوس ہو رہا ہے کہ ہم آپ سے جدا ہو رہے ہیں، لیکن پھر کبھی ملیں گے، ضرور سے ملیں گے، روتے روتے جدا ہو رہے ہوتے ہیں. اور ایک ہوتا ہے ناراضگی کے ساتھ جدا ہونا. ٹھیک ہے، تو یہاں پر اللہ رب العزت جو ہے وہ ہمیں ناراضگی کے ساتھ ایسے لوگوں سے جدائی اختیار کرنے کا حکم دے رہے ہیں کہ جنہوں نے دنیا کو کھیل تماشا بنایا ہوا ہے اور دنیا کی زندگی نے ان کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے. لیکن اس کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ کیا حکم فرما رہے ہیں ایمان والوں کو، یعنی جو قرآن مجید کے مخاطب ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ یہاں پر ایڈریس کر رہے ہیں ڈائریکٹلی، ان کو کیا حکم فرما رہے ہیں؟ یعنی میں اور آپ. ٹھیک ہے، ہم اور آپ جو ہے وہ قرآن مجید پڑھ رہے ہیں نا، قرآن مجید کی تفسیر سن رہے ہیں، سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو یہاں پر ہم ہی مخاطب ہیں نا اللہ تعالیٰ کے، اللہ تعالیٰ ہم سے بات کر رہے ہیں. تو دوسرا حکم ہمیں کیا فرما رہے ہیں؟ پہلا حکم تھا زر، چھوڑ دو ناراضگی کے ساتھ، اور دوسرا حکم ہے وذکر بھی، اور ان کو یاد دہانی کراتے رہو قرآن مجید کو استعمال کرتے ہوئے. ان کو یاد دہانی کراتے رہو، نصیحت کرتے رہو. کیسے نصیحت کرتے رہو؟ وہ طریقہ بھی بتلا رہے ہیں، بھی قرآن مجید کے ساتھ، کیونکہ ہا کی جو ضمیر ہے یہ قرآن مجید کو پوائنٹ کر رہی ہے. ٹھیک ہے، اور ساتھ ساتھ، اچھا یہ دوسرا حکم ہو گیا کہ ان کو قرآن مجید کے ساتھ نصیحت بھی کرتے رہو. لیکن اس کی ایک وجہ بھی بیان کر دی کہ اس کی وجہ کیا ہونی چاہیے. ان تبصل نفس بما کسبت، کہ تمہارے دل میں یہ احساس بھی ہونا چاہیے کہ وہ لوگ گرفتار نہ ہو جائیں اپنے کیے میں. ٹھیک ہے، وہ لوگ گرفتار نہ ہو جائیں اپنے کیے میں. کیا مطلب ہے اس کا کہ وہ لوگ گرفتار نہ ہو جائیں اپنے کیے میں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ نصیحت اس فکر کے ساتھ ہونی چاہیے، نصیحت اس احساس کے ساتھ ہونی چاہیے کہ ये नसीहत उनको बचाएगी, ठीक है। यानी ये जो इल्म है जो मैं उन तक पहुंचा रहा हूँ, ये जो मैं उनको बात समझा रही हूँ, ये बात अगर उन्होंने मान ली तो वो बच जाएंगे, वरना वो मुसीबत में गिरफ्तार हो जाएंगे, वरना वो मुसीबत में गिरफ्तार हो जाएंगे, ठीक है। क्या मतलब कि मैं सिर्फ उनको अपने किसी तौर तरीके की तरफ इनवाइट नहीं कर रही, ठीक है, कि भाई मेरा काम करने का तरीका ये है, तो मैं समझती हूँ कि मेरा काम करने का तरीका बड़ा अच्छा है, बड़ा जो है वो मुझे अच्छा लगता है, तो अब सारे लोग जो है वो मेरी तरह के काम, मेरी तरीके से काम करना शुरू कर दें क्योंकि मुझे वो अच्छा लगता है, ठीक है। तो अब मैं लोगों को उसकी तरफ दावत दे रही हूँ। मिसाल के तौर पर मुझे काला कपड़ा पहनना अच्छा लगता है, ठीक है, काला बुर्का पहनना मुझे अच्छा लगता है, तो मैं लोगों को काला बुर्का पहनने की तरफ दावत दे रही हूँ, ठीक है, कि भाई जब वो लोग काला बुर्का पहनेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा कि मेरे जैसे देखो और भी लोग हो गए, मैं अकेली नहीं रही, काला बुर्का पहन करके मैं ज़रा अजीब सी लगती थी, तो अब मेरे साथ और भी बहुत सारी औरतें जो हैं वो काला बुर्का पहनेंगी तो मैं अजीब नहीं लगूंगी इतना, ठीक है ना। या ये कि एक दफ़ा हम दोस्तों के साथ बैठे हुए थे, बहुत पहले की बात है, तो ऐसे ही मैंने, हमारे एक दोस्त थे, तो उन्होंने कहा कि जल्दी से लोगों को मुसलमान करो, जल्दी से लोगों को मुसलमान करो, ठीक है। तो अब वो अजीब उनकी हालात थे, तो इस वजह से मैंने कहा कि फिर क्या होगा मुसलमान कर होने के बाद, फिर वो क्या, हम अमेरिका की बात कर रहे हैं, तो ये अमेरिकी जो लोग हैं ना नॉन मुस्लिम्स, तो इनको जल्दी से मुसलमान कर लो। तो मैंने कहा फिर क्या होगा, फिर हम सब बैठ करके बिरयानी खाएंगे, ठीक है, आप क्यों लोगों को मुसलमान करना चाह रहे हैं, ताकि जिस तरह आप बिरयानी खाते हैं उसी तरह वो भी बिरयानी खाएं, ठीक है, तो आप जो है वो स्टैंड आउट नहीं होंगे कि भाई दे आर दी ओनली वंस ईटिंग बिरयानी। सो अब बहुत सारे लोग बिरयानी खाना शुरू हो जाएंगे, ये मुस्लिम कल्चर है, पाकिस्तानी इंडियन मुस्लिम कल्चर, कि जी वो एक खास किस्म का खाना खाते हैं,
ठीक है, तो क्या लोगों
तो क्या हम लोगों को इसलिए मुसलमान करें कि वो भी हमारे किस्म का खाना खाना शुरू कर दें, हमारा कल्चर अडॉप्ट कर लें, राइट, हमारा कल्चर अडॉप्ट कर लें, ताकि हम जो है वो अच्छा हमें भी फील होना शुरू हो जाए कि भाई हमारे कल्चर के साथ देखो कि देखा, पाकिस्तानियों को बड़ी खुशी होती है ना जब कोई गोरी औरत जो है, राइट, गोरी औरत हो और वो जो है वो शलवार कमीज और दुपट्टा पहन करके आ जाए, तो हमें बड़ी खुशी होती है कि देखो कितनी पाकिस्तानी लग रही है ये, राइट, कितनी पाकिस्तानी लग रही है कि ये शलवार कमीज और दुपट्टा पहन करके आ गई है, क्योंकि अपना कल्चर जो है ना वो जब गैर लोग अपना कल्चर अडॉप्ट कर लें तो बड़ा अच्छा फील होता है ना हमें, राइट। तो क्या दीन की दावत इस नियत के साथ देनी है कि लोग हमारा कल्चर अडॉप्ट कर लें, ठीक है, हमें अच्छा लगना शुरू हो जाएगा और जो है वो हम लोगों की नजरों में जो है वो वियर्ड नहीं लगेंगे, अजीबो गरीब नहीं लगेंगे, क्या ये नीयत होनी चाहिए हमारे दिल में? नहीं, अल्लाह ताला हमें बता रहे हैं कि ये नीयत तुम्हारे दिल में नहीं होनी चाहिए, बल्कि क्या नीयत होनी चाहिए कि ये इस्लाम जो है यही निजात है मुसीबतों से, दुनिया की मुसीबतों से भी निजात इसी दीन के अंदर रखी है और आखिरत की मुसीबतों से निजात भी इस दीन में रखी है। मैं अगर किसी को इस दीन की तरफ दावत दे रही हूँ और बलागुल मुबीन कर रही हूँ, उनको बात समझा रही हूँ, तो मैं उनको अजाब से बचाने की नीयत से ये बात कर रही हूँ, ये काम कर रही हूँ, ये कोई मुझे इसके ऊपर ये नहीं है कि तनख्वाह मिल रही है या मुझे बस किसी ने हुक्म किया है तो इस वजह से मैं ये काम कर रही हूँ, जिसको कहते हैं ना बादले नाख्वास्ता, मैं ये काम कर रही हूँ, राइट, एज अ जॉब मैं ये काम कर रही हूँ, दफ्तर का काम कर रही हूँ, ठीक है, तो बस क्या मुसीबत है करना पड़ रहा है इस तरह के जज्बे के साथ, नहीं बल्कि ये तो हयात है, ये तो जिंदगी है, वरना क्या होगा, अंतुबसल नफ्सुम बिमा कसबत, क्या होगा, तुबसल नफ्सुम बिमा कसबत, कि वो अपने गुनाहों के और अपने कुफर और शिर्क के अंदर मुब्तला होकर के अल्लाह के अजाब के मुस्तहिक बन जाएंगे, ठीक है। तो इस वजह से जो दीन का दाई होता है ना, दीन की दावत देने वाला होता है, एक तो ये कि उसके दिल के अंदर ये एहसास होना लाजमी है, इस एहसास के बगैर वो दीन की दावत नहीं दे सकता, वो सिर्फ कल्चर की दावत दे रहा है अगर उसके अंदर ये एहसास नहीं है। अगर उसके अंदर ये फीलिंग नहीं है, ये फिक्र नहीं है, तो वो दीन की दावत नहीं दे रहा, बल्कि वो सिर्फ किसी कल्चर की दावत दे रहा है। कल्चर समझते हैं ना, खास किस्म का लिबास पहन लेना, खास किस्म का खाना खा लेना, खास किस्म का जो है वो पहनना ओढ़ना वाली कुछ तौर तरीके कर लेना, चाल ढाल कर लेना, दिस इज ऑल कल्चर। ठीक है, सुन्नत भी हमारे लिए एक कल्चर बन चुका है। सुन्नत को जो है ना, वो हमने दीन की नजर से नहीं देखना शुरू कर दिया, बल्कि जो दीनदार हो गए हम, ठीक है, अगर हमारे अंदर ये एहसास पैदा नहीं हुआ है दीन के बारे में कि दीन तो निजात है मुसीबतों से, तो फिर ये जो जाहिरी सुन्नतें हैं, इनकी हैसियत सिर्फ कल्चर की हैसियत है बस। ठीक है, सिर्फ कल्चरल हैसियत है इनकी, हकीकत में इसकी दीन की वैल्यू नहीं है। ठीक है, यानी ये जो जाहिरी तौर पर जाहिरी दीन होता है, सुन्नत से आया है ना, नबी अलैहिस्सलाम इस तरीके से रहा करते थे और सहाबियात जो हैं वो इस तरीके से रहा करती थीं। ठीक है, लेकिन दिल के अंदर फिक्र तो है नहीं, दिल के अंदर ये एहसास तो है नहीं, तो फिर तो सुन्नत भी आपके लिए कल्चर है। खलास, औरत है तो सहाबियात का की सुन्नत आपके लिए कल्चर बन चुकी है, और मर्द है तो सहाबा की सुन्नतें जो है वो आपके लिए कल्चर बन चुकी हैं। ये तो फिक्र है, ये तो एहसास है कि दीन ही निजात है, वरना मुसीबत ही मुसीबत है। इसी वजह से पहली बात तो ये कि दाई के जो दीन की तरफ दावत देने वाला होता है ना, उसके दिल में ये एहसास शर्त है। ठीक है, इसके बगैर वो दावत नहीं दे सकता, दीन की तरफ दावत नहीं दे सकता, वरना वो कल्चर की तरफ दावत देने वाला बन जाएगा। और दूसरी बात ये कि जब ये एहसास उसके दिल में होता है, तो अब उसके लिए कोई छुट्टी नहीं होती, उसकी कोई छुट्टी नहीं होती, कोई वेकेशन नहीं होती उसकी दीन की दावत से। ठीक है, जिस तरह दफ्तर के अंदर काम होते हैं ना, कि आपको जॉब दी जाती है, आपको तनख्वाह दी जाती है, तो आप इस वजह से 9 to 5 काम करते हैं, सुबह 9 बजे से लेकर के शाम 6 बजे तक आप दफ्तर में काम करते हैं, और दिन में हफ्ते में आप 5 दिन काम करते हैं, बाकी 2 दिन आपकी छुट्टी होती है ना। किसी मुल्क में जो है वो थर्सडे फ्राइडे की छुट्टी होती थी, किसी जगह जो है वो फ्राइडे सैटरडे की छुट्टी होती है, किसी जगह सैटरडे संडे की छुट्टी होती है, तो ये 2 दिन आपकी छुट्टी के दिन होते हैं, इसमें आप जो है वो जॉब का काम नहीं कर रहे होते हैं, राइट? रात के वक्त आप जॉब का काम नहीं कर रहे होते हैं, दिन के वक्त आप जॉब का काम कर रहे होते हैं। दीन के दावत देने वाला जिसके अंदर ये एहसास हो जाए कि अगर ये नसीहत लोगों ने नहीं मानी, तो वो तो अपने किए के अंदर गिरफ्तार हो जाएंगे, अजाब का शिकार हो जाएंगे, उसके लिए कोई छुट्टी नहीं होती। वो दिन में भी ये काम करता है, वो रात में भी ये काम करता है, वो हफ्ते के 5 दिन भी ये काम करता है, और हफ्ते के बाकी जो 2 दिन लोग छुट्टी मनाते हैं, उस दिन भी वो ये काम करता है, उसकी कोई छुट्टी नहीं होती। इसी वजह से हमारे हजरत जी रहमतुल्लाह अलैह, उनके बारे में उनके बेटे साहिबजादा सैफुल्ला साहब ने वाकया सुनाया, सब नहीं सुना होगा, अब तो सबको ये बातें अब तो अल्हम्दुलिल्लाह पता चल चुकी हैं, कि मैंने एक दफ़ा अपने अब्बू जी से पूछा कि अब्बू जी, दूसरे लोगों की छुट्टी हुआ करती है, आपकी तो कभी छुट्टी नहीं होती, राइट? आपकी तो कोई छुट्टी नहीं होती हजरत जी, हर वक्त आप जो है वो दीन का काम करते रहते हैं, हर वक्त आप लोगों से मुलाकातें करते रहते हैं, हर वक्त आप जो है वो बयान करते रहते हैं, हर वक्त आप जो है मजालिस करते रहते हैं। ठीक है, जहां बैठूं, जहां बैठे वहां तेरा फसाना छेड़ देते हैं, जहां बैठे जब भी बैठे। ठीक है, तो आपकी कभी छुट्टी नहीं होती, आपकी छुट्टी कब होगी? तो फरमाते हैं कि अबू जी ने जवाब दिया कि बेटा, मेरी छुट्टी तो एक ही दिन होगी, मेरी छुट्टी तो एक ही दिन होगी, जो कौन सा दिन था? 14 दिसंबर 2025 का दिन। वो दिन भी आ गया, पहले वो दिन आया नहीं था, हम सोचते थे कि ऐसा दिन हजरत जी पे पहले आएगा कि हम पे पहले आएगा, नहीं पता था किसी को भी। कि कौन इस दुनिया से पहले जाएगा, किसकी छुट्टी इस दुनिया में पहले होगी। हजरत जी की छुट्टी पहले हो गई, राइट, 14 दिसंबर 2025 को हजरत जी की छुट्टी हो गई। उससे पहले हजरत जी की कोई छुट्टी नहीं थी। अब कब्र में जाकर के आराम फरमा रहे हैं, दुनिया में आराम नहीं किया, दुनिया में छुट्टियां नहीं मनाई, दुनिया में वेकेशन ही नहीं करी। हाँ, बच्चों के साथ वक्त भी गुजारते थे, बीवी के साथ भी वक्त गुजारते थे, और जो है वो सैर व तफरीह के लिए भी जाते थे, राइट, और जो है वो मुख्तलिफ मुल्कों में जब दीन के काम के लिए जाते थे तो वहां पर जो है वो सैर व तफरीह भी करते थे। कभी जू लेकर के जा रहे हैं, कभी जो है वो न फॉल जो 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 क्या नाम है, विक्टोरिया फॉल्स, जैम्बिया का जो मुल्क है उसके बॉर्डर के ऊपर विक्टोरिया फॉल्स है, दुनिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट फॉल्स, ठीक है, आबशार, तो विक्टोरिया फॉल्स भी लेकर के जा रहे हैं। लेकिन छुट्टी नहीं है, छुट्टी नहीं है कोई भी। जब कोई आके दीन की बात करना चाहेगा तो उसके साथ दीन की बात भी करेंगे और मौके की तलाश में रहेंगे, कब लोगों को अल्लाह के बारे में बताएं, कब लोगों को जो है वो आखिरत के बारे में बताएं, कब लोगों को जो है वो अल्लाह का जिक्र सिखलाएं। बस मौका मिलना चाहिए, वेकेशन के अंदर भी, जो बजाहिर दूसरे लोगों की वेकेशन होगी, इनकी वेकेशन नहीं होगी, इनकी छुट्टी नहीं होगी। बात समझ में आ रही है? तो ये होता है दीन का दाई, राइट। क्या है वो सूरह नूह के अंदर नूह अलैहिस्सलाम ने जो फरमाया, इन्नी दाउतु कौमी लैलं व नहारा, इन्नी दाउतु कौमी, बेशक मैंने तो अपनी कौम को पुकारा दिन भी और रात भी, रात भी और दिन भी, लैलं व नहारा, ठीक है। तो भाई ये होता है दीन का दाई। अब ये दीन का दाई जो है वो हम सब हैं कि नहीं है, कौन है, कोई ये अल्लाह ताला की तरफ से कोई खास तनख्वाह मिलेगी, अल्लाह ताला की तरफ से तो तनख्वाह मिलती है वैसे दीन के दाई को, लेकिन क्या कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कोई गवर्नमेंट है जो कि एम्प्लॉयज रखेगी अपने, कि जी आपको जो है ना वो हम दीन की दावत के लिए तनख्वाह दे रहे हैं, आप आगे जाकर के दीन की दावत दें। नहीं, कोई गवर्नमेंट नहीं है ऐसी, ना कभी पहले थी ना कभी बाद में होगी, जो कि दुनिया की गवर्नमेंट लोगों को तनख्वाह दे दीन की दावत के लिए, ठीक है। कोई इदारा नहीं है कि महदुल फकीर अल इस्लामी लोगों को तनख्वाह देता है कि जी अब आप जाकर के लोगों को दीन की दावत दें, या कोई तंजीम या कोई तहरीक या कोई जमात, नहीं, कोई जमात नहीं है, कोई तहरीक नहीं है, कोई तंजीम नहीं है, कोई इदारा नहीं है, कोई मदरसा नहीं है जो कि तनख्वाह दे दीन की दावत के लिए लोगों को, ना पहले कभी था और ना आज कभी है और ना आइंदा कभी होगा, बल्कि दीन की दावत के लिए तनख्वाह जो है ये परवरदिगार से मिलती है, ये डायरेक्ट अल्लाह रब्बुल इज्जत से मिलती है। दरमियान में कोई एचआर डिपार्टमेंट नहीं होता, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट नहीं होता, ठीक है, दरमियान में कोई कंपनी नहीं होती, कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई इदारा नहीं होता, ये अल्लाह की तरफ से तनख्वाह मिलती है। तो दीन का जो दाई होता है ये डायरेक्ट अल्लाह का मुलाजिम होता है, बाकी लोग जो हैं उनको भी तनख्वाह अल्लाह से मिलती है, लेकिन दरमियान में कोई सबब होता है, दरमियान में कोई इदारा होता है, कोई कंपनी होती है, कोई इंस्टीट्यूशन होता है, कोई गवर्नमेंट होती है, वो उसके सर्वेंट होते हैं, ठीक है। लेकिन जो दीन का दाई होता है उनका दरमियान में कोई ऐसा सिस्टम नहीं होता, कोई फिक्स सिस्टम नहीं होता, अल्लाह ताला जिसको चाहते हैं, जब चाहते हैं, जैसे चाहते हैं, सबब बना करके उसके वास्ते से इनको तनख्वाह देते रहते हैं, राइट। अल्लाह ताला इनके एम्प्लॉयज एम्प्लॉयर होते हैं, इनके इनके जो है मालिक होते हैं, अल्लाह ताला इनके जो है वो सेठ होते हैं, ठीक है, और अल्लाह ताला फिर जैसे चाहते हैं, जब चाहते हैं, जहां चाहते हैं, इनको तनख्वाह दिलवाते रहते हैं। इनका दरमियान में कोई इदारा फिक्स नहीं होता, कोई कंपनी नहीं होती दरमियान के अंदर, ठीक है, लेकिन उसकी वजह क्या होती है, क्योंकि इनका काम ही बिल्कुल मुख्तलिफ होता है हर एक से। इनका काम तो अल्लाह के दीन की दावत देना होता है, ये लेटे भी दीन की दावत का काम। आजकल तो व्हाट्सएप की वजह से जो वही फोन जो दूसरे लोगों के लिए हेल्प फोन होता है ना, वही फोन जो दूसरे लोगों के लिए हेल्प फोन होता है, जहन्नुम में जाने का सबब बन रहा होता है, उनके लिए वही फोन आज जो है वो दीन की दावत का काम है, ठीक है। उसी फोन के जरिए से, उसी व्हाट्सएप के जरिए से, उसी टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए वो दिन रात जो है वो दीन का काम कर रहे होते हैं, ठीक है? क्योंकि आपको पता है कि सोशल मीडिया, फोन और इंटरनेट, इसकी कोई टाइमिंग नहीं है, इसका कोई जगह नहीं है, हर जगह ही ऑन है, हर जगह जो है ये, हर वक्त जो है ये ऑन होता है इंटरनेट, ठीक है? ना कि लाइट चली जाए, आपका फोन खराब हो जाए, फिर आप एक्सेस नहीं कर सकते इंटरनेट को, वरना तो हर जगह एक्सेस कर सकते हैं और हर वक्त एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है? तो दीन की दावत की ये हकीकत है, ठीक है? अच्छा, इसमें बुरी सोहबत को छोड़ना भी है, लेकिन उन्हें बुरे काम करने वालों को नसीहत भी करनी है, और नसीहत खैर ख्वाही के जज्बे के साथ करनी है, ठीक है ना? कोई सर से उतार देने वाली कि बस मैंने तो अपने सर से उतारना है इस काम को कि मैंने लोगों को दावत दे दी, नहीं, इस तरह नहीं करनी है, बल्कि अंतुबसला नफ्सुम बिमा कसबत, ठीक है, इस फिक्र के साथ दावत देनी है, और लैसा लहा मिन दूनिल्लाही, इतनी उनके बारे में फिक्र होनी चाहिए कि उनके लिए तो अगर वो मुसीबत में गिरफ्तार हो गए तो अल्लाह को छोड़ करके ना कोई उनका वली होगा और ना कोई उनका शफी होगा, ठीक है? हत्ता कि वो अगर सब कुछ भी देना चाहे ना इस मुसीबत से निकलने के लिए, तो कुछ भी उनसे कबूल नहीं किया जाएगा, है? ये जैसे दुनिया वाले होते हैं ना, भत्ता लेकर के जो है ना वो छोड़ देते हैं किसी को, उसको भत्ता भी कहते हैं, उसको तावान भी कहते हैं, उसको रैंसम भी कहते हैं, रैंसम, भत्ता, तावान लेकर के फिर मुसीबत से निकाल देते हैं, ये दुनिया के बदमाश होते हैं। अल्लाह ताला का मामला ये नहीं है, अल्लाह ताला, नाउज बिल्ला, अल्लाह ताला कोई बदमाश नहीं है कि बस बदमाशी में किसी को मुसीबत में गिरफ्तार कर दिया था, अब भत्ता लेकर के उसको छोड़ देंगे, नहीं, अल्लाह ताला किसी को मुसीबत में गिरफ्तार नहीं करते, बल्कि हम खुद अपने आप को मुसीबत में गिरफ्तार करते हैं अल्लाह के हुक्मों की नाफरमानी करके, राइट? अपने मुहसिन हकीकी के हुक्मों को पसे पुश डाल करके हम खुद मुसीबत में अपने आप को मुब्तला करते हैं। अब उस मुसीबत से निकलने का वाहिद रास्ता यह है कि अल्लाह ताला से माफी मांगे इसके ऊपर, रोए और गिड़गिड़ाएं इसके ऊपर, ठीक है? तो अल्लाह ताला फिर एक टिका लिए बगैर, एक टका मतलब टका कहते थे पहले, बहुत ही कम कीमत करेंसी, बांग्लादेश की करेंसी को टका उसका नाम है, अब तो वो करेंसी भी बहुत ज़्यादा, पाकिस्तानी रुपए से तो सब सारी की सारी करेंसीज बढ़ चुकी हैं, क्योंकि पाकिस्तानियों ने अभी भी, देखो पतंगों का फेस्टिवल हो रहा है ना बसंत के अंदर, ये लाहौर के अंदर पतंगों का, क्या 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 कर रहे हो तुम, ये पतंगे उड़ा रहे हो? अल्लाह ताला ने तुम्हें दुनिया में पतंगे उड़ाने के लिए भेजा था, हम लाहौर के अंदर इस वक्त बैठे हुए हैं, ठीक है? तो घर से बाहर, यहाँ जो बाहर निकले पतंगे फंसी हुई हैं, यानी एक जगह खड़े होकर के, जो बहुत ही नैरो किस्म की वहां से व्यू था, तो मैंने अपने बेटे को बताया, बेटा देखें ये 5 पतंगे नजर आ रही हैं दरख्तों में फंसी हुई, जो रात को लोग पतंगे उड़ा रहे थे, 5 पतंगे तो हमें वहीं खड़े खड़े नजर आ गई जो कि दरख्तों में फंसी हुई थी, राइट? मुसलमान, मुसलमान मुल्क का शहरी, राइट? जिसके घर के अंदर अल्लाह का कुरान भी है, जिसके मोहल्ले के अंदर अल्लाह के जो है वो घर भी मौजूद हैं, सब चीजें मौजूद हैं, लेकिन क्या कर रहे हैं, ऐसी मत मार दी गई है, ऐसी अकल खराब कर दी गई है कि म्यूजिक के तानों के ऊपर है, लाउड म्यूजिक लगा करके अपने घरों के छतों के ऊपर खड़े होकर के पतंगे उड़ा रहे हैं। अल्लाह का अजाब है ये, अल्लाह ताला ने मत मार दी है, अकल खत्म कर दी है, ये अल्लाह का अजाब होता है। ये बनी इसराइल के ऊपर भी आया था, कल हम गाड़ी में जा रहे थे तो बच्चों को बता रहे थे, ये देखो मोटरसाइकिल के ऊपर जो है ना, लाहौर वालों को, ये क्लास में मोटरसाइकिलों के ऊपर डंडे लगाए हुकूमत ने, बाकायदा डंडे लगाए, सामने रॉड्स लगाए, हर मोटरसाइकिल के ऊपर रॉड लगा हुआ है, तो परेशान ये क्यों रॉड लगा हुए, तो हमें दोस्तों ने बताया कि इसकी वजह यह है कि जो पतंगे उड़ाने वाले लोग हैं, इनका जो पतंग का मांझा होता है ना, वो अगर किसी मोटरसाइकिल वाले के सामने आ जाए तो वो इतना शार्प मांझा होता है कि उससे उसकी गर्दन कट जाती है, गर्दन कट जाती है बंदे की, मोटरसाइकिल चलाने वाले की। तो अब उस मांझे से बचाने के लिए हर मोटरसाइकिल के सामने जो है वो रॉड लगाए हैं इन्होंने, तमाशा देखो तुम, हद देखो तुम, अकल की खराबी की हद देखें आप। ये काम कर रही है एक मुमलिकत की हुकूमत के डंडे लगा रही है ताकि पतंगों से जो है ना वो लोगों के गर्दन ना कट जाए। ये मत मार देना कहते हैं इसको, और ये अल्लाह का अजाब होता है। तो बच्चे को बताया हमने, गाड़ी का ड्राइवर भी सुन रहा था कि अल्लाह के हुक्मों की नाफरमानी करते हैं ना तो ऐसे अकल मार दी जाती है। और यही मामला जो है वो बनी इसराइल के साथ भी हुआ था, और यही बात हमने पिछली चंद क्लासेस में सूरह माईदा की तफसीर में भी पढ़ी है, जो मर्दों में चल रही है ना, पीर की रात को सूरह माईदा की तफसीर चल रही है, उसमें यही बात है कि बनी इसराइल की अल्लाह ताला ने कैसे जो है वो अकल खराब कर दी थी, क्योंकि उन्होंने अल्लाह के साथ किए हुए वादे को तोड़ा था। किसी को बंदर बना दिया था, किसी को खंजीर बना दिया था, और किसी की वैसे ही जो है वो अकल खराब कर दी थी। तो यही मामला हमारे साथ भी हो रहा है। इन्होंने मैसेज लिखा कि माई लाहौरी फ्रेंड टोल्ड दैट पीपल रेंटेड देयर रूफ्स फॉर 2 to 3 लाख रुपीज पर नाइट। 2 to 3 लाख नहीं, हमें लोगों ने बताया 50 लाख रुपए, 50 लाख रुपए के ऊपर छतों को किराए पे उठाया लोगों ने। क्यों? ताकि उस छत पे आकर के कोई अमीर कबीर इंसान जो है वो पतंगे उड़ा सके। कमबख्ती की इंतहा देखें आप, 50 लाख रुपए में। आप 2-3 लाख की बात बता रही हैं ना, हमने भी 2-3 लाख पहले सुना था, 15 लाख भी सुना था, एक ने आके बताया 50 लाख रुपए। तस्वर करो यार। और ये नहीं कि सिर्फ यहां के रहने वाले पतंगे उड़ा रहे हैं, नहीं, अमेरिका से सफर करके आए हैं लोग बसंत के फेस्टिवल में शामिल होने के लिए, इतना दूर दूर से हजार। अल्हम्दुलिल्लाह इसी मुल्क के अंदर अमेरिका से सफर करके लोग जो है वो नक्शबंदी इज्तिमा में भी शामिल होने के लिए आए। दूर दूर से, कोई मलेशिया से आया, कोई श्रीलंका से आया, कोई अफ्रीका से आया, कोई सऊदी अरब से आया, कोई अमेरिका से आया, कोई यूरोप से आया, अपने गुनाहों पर नादिम शर्मिंदा होकर के अल्लाह ताला से दुआएं भी मांगी, और दीन का काम करने का नया अजम लेकर के इज्तिमा से भी लौटे। लेकिन साथ साथ ये भी जो है वो मामला हो रहा है कि दुनिया जहां से लोग जो है वो पतंगे उड़ाने के लिए यहां पर आए। अंतुबसला नफसुम बिमा कसबत। ये हमारे अपने भाई भाई बंद है ना, ये हमारे अपने रिश्तेदार हैं, ये हमारे अपने दोस्त अहबाब हैं, हमारे अपने हमवतन हैं। हम कैसे जो है मुतमईन होकर के बैठ सकते हैं? अपने गुनाहों के अजाब के अंदर मुब्तला हो चुके हैं। ठीक है, उन्होंने क्या लिखा कि इससे मुराद ये हुआ कि नाराज होकर उनकी सोबत को छोड़ना है, लेकिन खैरख्वाही की नियत से दावत के लिए उनसे मिलना भी है बेशक। ठीक है, लेकिन औरतों के ऊपर पर्दा चूंकि फर्ज है, इसलिए औरतों ने दावत और तबलीग का काम जो है वो औरतों में करना है, ना महरम मर्दों में नहीं करना, क्योंकि उससे फिर अल्लाह का हुक्म तोड़ने वाली फिर आप भी बन जाएंगी। अगर आप ना महरम मर्दों के अंदर दावत का काम करेंगी तो आप खुद जो है वो अल्लाह के अजाब में मुब्तला हो जाएंगी। तो इस वजह से इन बातों का ख्याल करके जो है वो दावत का काम करना है। ठीक है, अच्छा, बहरहाल तो आज का टाइम तो अल्हम्दुलिल्लाह इसी में मुकम्मल हो गया। अल्लाह ताला बस कबूल फरमा ले, बात जो की गई है उसकी समझ अता फरमा देना। ठीक है, तब जो है वो इन क्लासेस का फायदा होगा, कुरान को पढ़ने का समझने का फायदा होगा। देखें, एक ही आयत के अंदर अल्लाह ताला ने हमें कैसा पैगाम दिया है। ठीक है, बाकी वैसे भी हम सफर पर हैं, किताब तो साथ लेकर के चले थे घर से, लेकिन वो सामान के साथ कहीं और है और हम जो है वो कहीं और हैं, तो वो इसी फोन के जरिए से खाली क्लास कर रहे हैं इस वक्त। ठीक है, तो हम थोड़ा सा बस जल्दी से पढ़ लेते हैं, चंद मिनट रह गए क्लास के ख़त्म होने में, कि हज़रत मुफ्ती शफ़ी रहमतुल्लाह ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने इस आयत में बतला दिया कि खुदा के मुजरिम के लिए सज़ा से बचाने वाला ना कोई दोस्त अजीज हो सकता है, ना किसी की सिफारिश बगैर अल्लाह ताला की इजाज़त के चल सकती है, और ना कोई माल कबूल किया जा सकता है, बल्कि अगर सारे जहान का माल भी उसके कब्जे में हो और वो इस सब माल को सजा से बचने का फिदिया बनाना चाहे, तब भी ये फिदिया उससे कबूल नहीं किया जाएगा। ठीक है, यानी भत्ता, रैंसम और तावान या फिदिया, जो भी आप इसको कहें, ये कबूल हरगिज हरगिज नहीं किया जाएगा। कबूल तो सिर्फ तौबा के आंसू किए जाएंगे। آخر آیت میں فرمایا اولائک الذین ابسلوا، یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے اعمال بد کی سزا میں پکڑے گئے ہیں، ان کو پینے کے لیے جہنم کا کھولتا ہوا پانی ملے گا، جس کے متعلق دوسری آیت میں ہے کہ وہ ان کی انتڑیوں کے ٹکڑے ٹکڑے اڑا دے گا۔ یہ بھی قرآن مجید کے اندر ہی ہے نا کہ عذاب ایسا آئے گا، ٹھیک ہے، کہ جو انٹسٹائن ہے نا وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گی ایسے پانی سے، اور اس پانی کے علاوہ دوسرے بھی دردناک قسم کے عذاب ہوں گے ان کے کفر اور انکار کے بدلے میں، ٹھیک ہے۔ تو آج کا جو مسلمان ہے وہ کفر اور انکار کے اوپر یہاں تک پہنچا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کی ہمیں فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم سوچیں کہ بھائی کیسے جو ہے وہ دین کی اصل حقیقت اور بات کی سمجھ جو ہے وہ ان تک پہنچائی جا سکتی ہے، ورنہ طرح طرح کے عذابوں میں، دنیا کے بھی عذاب، پتنگیں اڑا رہے ہوں گے اور پتنگوں کے مانجھوں کے ذریعے سے جو ہے وہ ایک دوسرے کو قتل کر رہے ہوں گے، ٹھیک ہے نا، یہ دنیا کا عذاب نہیں ہے تو اور کیا ہے، اور آخرت کا عذاب بھی، ٹھیک ہے۔ اس آخری آیت میں یہ بھی معلوم ہوا کہ جو لوگ آخرت سے غافل صرف دنیا کی زندگی پر مگن ہیں، ان کی صحبت و مجالست بھی انسان کے لیے مہلک ہے۔ اس کا انجام یہ ہے کہ ان کی صحبت میں رہنے والا بھی اس عذاب کا شکار ہوگا جس میں وہ مبتلا ہے، ٹھیک ہے۔ تو صحبت سے نہ صرف یہ کہ گناہوں میں مبتلا ہوتے ہیں بلکہ گناہوں کے عذاب میں بھی صحبت اختیار کرنے کی وجہ سے انسان مبتلا ہو جاتا ہے۔ آگے فرماتے ہیں کہ ان تینوں آیتوں کا حاصل مسلمان کو برے ماحول اور بری صحبت سے بچانا ہے جو انسان کے لیے سم قاتل ہے، ٹھیک ہے، یعنی قتل کر دینے والا زہر ہے یہ بری صحبت اور برا ماحول، ٹھیک ہے۔ اجتماع میں کوئی مولانا صاحب بیان کر رہے تھے تو بڑی زبردست بات انہوں نے ماشاءاللہ کری کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر نا یا حسرتہ کا جو لفظ ہے، اے حسرت، یعنی جو کہ کوئی بہت ہی برا کام کرنے کے اوپر جب بندے کو بالآخر ندامت اور پشیمانی ہوتی ہے تو وہ حسرت کا لفظ استعمال کرتا ہے قرآن مجید کے اندر بھی، عربی زبان کے اندر بھی، یا حسرتا، اے حسرت، ٹھیک ہے۔ تو قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے 9 جگہوں پر یہ لفظ استعمال کیا ہے یا حسرتا، کہ وہ یہ کہیں گے اے حسرت کہ میں نے یہ کام کیا برا، اے حسرت کہ میں نے یہ کام کیا برا، لیکن ایک جگہ پر اللہ رب العزت نے اسی حسرت والے لفظ کے لیے یا حسرت والے بیان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک ہی آیت میں اس کو 2 مرتبہ استعمال کیا ہے، 2 مرتبہ استعمال کیا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ 2 مرتبہ کون سے والے برے کام کے لیے وہ بندہ کہے گا کہ کاش کہ میں یہ کام نہیں کرتا، وہ ہے بری صحبت کا کو اختیار کرنا، یا لیتنا، یا لیتنی لم اتخذ فل، یا آیت مجھے اب یاد نہیں آ رہی ہے، کہ کوئی حافظہ ہیں تو وہ بتا سکتی ہیں، کہ وہ جو فلانن خلیلہ، خلیلہ والی جو آیت ہے، فلانن خلیلہ، کہ اے کاش کہ میں نے ایسے برے شخص کی صحبت اختیار نہ کی ہوتی، اس کو اپنا خلیل نہ بنایا ہوتا، اس کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا، ٹھیک ہے۔ یعنی حسرت کی بھی ڈبل انٹینسٹی ہوگی ایسے شخص کو جس نے بری صحبت اختیار کی ہوگی، برے لوگوں کو اپنا دوست بنایا ہوگا، یہ نہیں کہ برے لوگوں کے پاس جا کر کے نصیحت کرتا ہوگا اور ان کو ڈراتا ہوگا اللہ کے عذاب سے، ان کو حقیقت سمجھانے کی کوشش کرتا ہوگا، بلکہ ان کو دوست بنا لیا اس نے، ٹھیک ہے، ان کے ساتھ قلبی تعلق اختیار کر لیا، تو یہ شخص جو ہے وہ دگنی حسرت کا شکار ہوگا، دگنی حسرت کا، ٹھیک ہے۔ تو کیا یہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم بھی ایسی لوگوں میں بن جائیں کہ ہمیں ڈبل حسرت ہو قیامت کے دن، یا ہم اپنی اولاد کے بارے میں چاہتے ہیں کہ جی اما حضور تو عالمہ بن رہی ہیں، اما حضور جو ہیں وہ تو دین کے درس میں جا رہی ہیں اور جو ہے وہ درس قرآن جو ہے وہ کر رہی ہیں یا سن رہی ہیں، اور بیٹی صاحبہ جو ہیں وہ کالج جا کر کے جو بالکل ہی یعنی بےہودہ قسم کا ماحول ہے اور ایمان کا قاتل ماحول ہے، بیٹی صاحبہ وہاں پہ جا رہی ہیں، یہ عالمہ بن رہی ہیں، رائٹ؟ تو بیٹی صاحبہ جو ہیں وہ کیا کریں گی، لم اتخذ فلانا خلیلا، جزاکم اللہ، انہوں نے آیت بھی لکھ کر کے دے دی، یا ویلتا، یا ویل، اے
ए हसरत लैतनी, काश के मैंने, लम अत्तखिज फुलानन खलीला। क्या हम चाहते हैं कि हमारी औलाद कयामत के दिन ऐसे अल्फाज कहे अल्लाह ताला के सामने, हमने क्यों उनको ऐसी सोहबतों के अंदर भेजा हुआ है, क्यों इस बारे में हम जो है वो कोई पक्का काम नहीं करते। पक्का काम करना, बच्चों को बुरी सोहबत से बचाने के लिए पक्का काम करना, क्यों नहीं करते हम पक्का काम? क्या है पक्का काम, यह आप बताएं। अपने बच्चों को बुरी सोहबत से बचाने के लिए पक्का काम किया है। इस पे क्लास खत्म कर देंगे इंशाल्लाह, फिक्र ना करें, ज्यादा नहीं आपको लेके बैठेंगे। अपना अपने हाथ को काटेगा जालिम और वो कहेगा यकूलू या लईतनी, या यकूलू या लईतनी इत्तखज़्तु मअर रसूल सबीला, मअर रसूल सबीला। हाँ, ये तो उसके बाद की बात है ना, उससे पहले की बात है कि मैंने रसूल का रास्ता क्यों नहीं अख्तियार किया। रसूल का रास्ता क्या था? बुरी सोहबत को छोड़ देना और दीन की मेहनत का काम करना, ये रसूल का रास्ता है, क्यों नहीं मैंने इख्तियार किया? इसके ऊपर भी उसको हसरत होगी, और फिर उसके बाद डबल हसरत के या वैलता लैतनी लम अत्तखिज फुलानन खलीला, अगली आयत के अंदर, ठीक है, वो टू मी, अंग्रेजी का तर्जुमा है, वुड दैट आई हैड नॉट टेकन सो एंड सो फॉर माई फ्रेंड। ठीक है, तो अपनी औलाद को फिर बुरी सोहबत से बचाने के लिए पक्का काम किया है। ये कच्चे काम तो हम बहुत करते रहते हैं ना, पक्के काम से क्या मुराद है? जी, कोई बताएगा? और रात को बुरी सोहबत से बचाने के लिए अच्छी सोहबत देना, ठीक है, अच्छी सोहबत देना। तो ये हमने कौन सी आपसे फिर लतीफा, कोई वो पहेली बुझवाई थी? पक्का काम पूछ रहे हैं ना, तो अच्छी सोहबत देना, तो ये तो कोई और बताए ना, पक्का काम क्या होता है? अपने बच्चों को अच्छी सोहबत देने के लिए पक्के काम, एक दो तीन मुख्तलिफ, देखें, सबसे पहले तो गिड़गिड़ा के अल्लाह ताला से अपने गुनाहों पे माफी मांगना और अल्लाह ताला से मदद मांगना, ठीक है। पक्का काम जो है वो तौबा और दुआ के बगैर शुरू नहीं हो सकता, घोल के पी जाए इस बात को, चाहे उसके लिए आपको कुछ भी करना पड़े। पक्का काम जो है ना, जो भी काम पक्का होता है वो तौबा और अल्लाह की मदद के बगैर नहीं हो सकता। तो पक्का काम करने का मतलब सबसे पहले कि अल्लाह ताला से अपनी गलतियों पे माफी मांगना और अल्लाह ताला से मदद मांगना कि ए अल्लाह, जो मुझसे गलतियां हो गई, मैंने खुद अच्छी सोहबत इख्तियार नहीं करी, बुरी सोहबत से अपने आप को नहीं बचाया, ए अल्लाह मुझे उसके ऊपर माफ फरमा दीजिए। अब तक मैंने अपनी औलाद को जो बुरी सोहबत से बचाने के लिए फिक्र नहीं करी, ए अल्लाह आप मुझे माफ फरमा दीजिए उसके ऊपर, ठीक है। तो ये हो गई तौबा। फिर दूसरी चीज, ए अल्लाह आप बुरी सोहबत से बचाने में मेरी मदद भी फरमा दीजिए, अच्छी सोहबत इख्तियार करने में मेरी मदद भी फरमा दीजिए, ये अल्लाह की मदद मांगना हो गया, इसको दुआ कह दें आप। पहला काम तौबा हो गई, दूसरा काम दुआ हो गई, ठीक है। फिर उसके बाद तीसरा काम क्या करना है? माफी और मदद, ठीक है। तीसरा काम क्या करना है कि अब बुरी सोहबत से उनको बचाना है, यानी उनको दूर रखना है, फिजिकली दूर रखना है बुरे असरात डालने वाली चीजों से, ठीक है। तो इसके अंदर जो है वो बाहर का माहौल उससे बुरा दूर रखना है, और घर के अंदर जो बुरी सोहबत मौजूद होती है उससे दूर रखना है। घर के अंदर की बुरी सोहबत क्या होती है? उसको कहते हैं टेलीविजन, स्ट्रेंजर इन आवर होम्स, स्ट्रेंजर इन आवर होम्स, यानी ये एक ऐसा गैर इंसान है, गैर चीज है, स्ट्रेंजर है, जो कि हमारे घरों के अंदर मौजूद है, ठीक है। एक काफिरा औरत ने बाकायदा टेलीविजन, गैजेट्स, फोन, इंटरनेट, इन सब के ऊपर किताब लिखी कि बच्चों के ऊपर इनके क्या असरात बुरे पड़ते हैं, और उसका नाम रखा स्ट्रेंजर्स इन आवर होम्स, इन आवर होम्स, हमारे घरों के अंदर जो गैर लोग मौजूद हैं, ठीक है, तो इनसे दूर रखना है अपने बच्चों को। ये है बुरी सोबत से बचाने का तीसरा काम, ठीक है। चौथा काम क्या करना है? चौथा काम ये करना है कि अच्छी सोबत जहां पर होती है वहां पे हमें जुड़ना है, अच्छी सोबतों से जाके हमें जुड़ना है, ठीक है। जिस तरह बुरी सोबत से हम घर के बाहर भी जुड़ते हैं, और ये बुरी सोबत हमारे घर के अंदर भी पहुंची हुई है गैजेट्स के जरिए से, ठीक है। उसी तरीके से अच्छी सोबत से हमने घर के बाहर भी जाकर के जुड़ना है, और अच्छी सोबत को घर के अंदर भी लेकर के आना है, अच्छी सोबत को घर के अंदर भी लेकर के आना है। हमारा घर पुराने जमाने वाला घर नहीं है अब, कि बाहर बाहर जिसको रख दिया अब वो बाहर, उससे आप दूर हो गए, या जो काम आप कर रहे हैं बस बाहर बाहर कर रहे हैं, नहीं। मॉडर्न हाउस जो होता है, जो मॉडर्न होम होता है, आज के दौर का जो घर है, तो उसमें बाहर और अंदर दोनों पे काम करना होता है, ठीक है। तो बुरी सोबत से बचाना है तो बैरूनी बुरी सोबत से भी बचाना है, और अंदरूनी बुरी सोबत से भी बचाना है, क्योंकि ये जो डिवाइसेस हैं ये अंदरूनी बुरी सोबत हैं जो कि आपके घर के अंदर मौजूद हैं, ठीक है। उसी तरीके से जो अच्छी सोबत इख्तियार करनी है, तो अच्छी सोबत घर के बाहर जाकर के भी इख्तियार करनी है, और अच्छी सोबत को घर के अंदर भी लेकर के आना है। अब इसकी क्या क्या तरीका होता है अच्छी सोबत को घर के अंदर लेकर के आना? अच्छी सोबत को घर के अंदर लेके आने का मतलब ये होता है कि दीन का काम आप अपने घर में भी शुरू करें, घर के अंदर भी आपके जो है वो दीनी मजालिस होनी चाहिए, ठीक है। घर के अंदर मशायख को इनवाइट करके अपने घर के अंदर जो है वो दीन का काम शुरू करें, ठीक है, या कोई ना कोई इस किस्म का कोई दीनी एक्टिविटी शुरू करें दीन की निस्बत से। बच्चियां हैं तो बच्चियों की दोस्तों को, उनकी जो हम उम्र की अच्छे नेक घरानों की बच्चियां हैं, उनको अपने घर में इनवाइट करें खेलने के लिए। छोटी बच्चियां तो खेलने के लिए इकट्ठी हूं आपके घर के अंदर, थोड़ी सी बड़ी हैं तो वो आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स के लिए इकट्ठी हूं आपके घर के अंदर आकर के। कभी मिल करके जो है वो बेकिंग करें, कभी मिल करके कुकिंग करें, कभी मिल करके कोई और इस किस्म की एक्टिविटी करें। लड़के हैं तो छोटे बच्चे हैं तो घर के अंदर भी उनके लिए कोई खेल कूद का जो है वो इंतजाम करें, प्ले स्कूल्स टाइप की चीज घर के अंदर भी कर सकते हैं। और बाहर के मुल्कों में तो घर के अंदर ही करना होता है, हमारे यहाँ कुछ बाहर की भी आपको जगह मिल जाती है पाकिस्तान इंडिया के अंदर जहाँ पे ये प्ले स्कूल टाइप की एक्टिविटी हो सकती है, लेकिन जो बाहर के मुल्कों में लोग रहते हैं उनको यूजुअली ये काम अपने घरों के अंदर करने होते हैं। तो अपने घर को पेश करें बच्चों के प्ले स्कूल्स के लिए, एक्टिविटीज के लिए, मजालिस के लिए, बयानात के लिए, दर्स कुरान के लिए। ये आपके घर के अंदर जो है वो नेक सोहबत का बनाना होगा, ठीक है, और घर के बाहर के नेक सोहबत के फिर उनको ऐसी एक्टिविटीज में ले करके जाएं जो नेक घरानों के जो लोग हैं उनके, अगर कोई फुटबॉल के या किसी और किस्म के स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज हो रही हैं वहां पे अपने बच्चों को लेकर के जाएं, राइट। जो बयान की एक्टिविटीज हो रही है वहां पे लेकर के जाएं, कोई इस किस्म का और कोई ऐसी चीज हो रही है अच्छे नेक सोहबत वालों की, वहां पे अपने बच्चों को लेकर के जाएं, बच्चियों को लेकर के जाएं। अपने घर के अंदर भी एक्टिविटीज अरेंज करें, अपने बाहर जाकर के भी जो है वो एक्टिविटीज अरेंज करें। इज्तेमाआत हैं, जैसे ये नक्शबंदी इज्तेमा था, यहाँ पे कितने लोग अपने बच्चों को लेकर, अपने लड़कों को लेकर के आए। खवातीन की साइड पे भी हमारे हजरत ने इज्तेमा में खवातीन का भी एरिया क्यों रखा है, ताकि घर की औरतें भी आएं, घरों की बच्चियां भी आएं, राइट। तो ऐसी एक्टिविटीज को जो है वो अरेंज करना है और इनके अंदर शामिल होना है। ये होता है नेक सोहबत को अरेंज करना अपने बच्चों के लिए, ठीक है भाई। जन्नत कमानी है कि नहीं कमानी है? जहन्नुम से बचना है और बचाना है अपनी औलादों को कि नहीं बचाना है, तो इसके लिए कुछ करना पड़ता है ना। दुनिया कमाने के लिए तो क्या क्या कुछ नहीं करते हैं, खाली बैठ के गप्पे तो नहीं मारते दुनिया कमाने के लिए, दिन रात एक कर देते हैं दुनिया के नुकसान से बचने के लिए, और आखिरत के नुकसान से बचने के लिए हम कुछ भी नहीं करना चाहते, बस दूसरे लोग करें, दूसरे लोग करें तो करें, वरना मैंने तो कुछ नहीं करना। नहीं, मैंने अपने घर में प्ले स्कूल अरेंज नहीं करना है, दूसरे लोग करें मेरे बच्चों के लिए प्ले स्कूल अरेंज, मैंने नहीं करना है। ऐसे नहीं मिलती जन्नत, ऐसे जहन्नुम से खुलासे नहीं मिलती। ठीक है, तो अपने आप को पेश करना होता है, आगे बढ़ना होता है, अपनी फिक्रों को जो है यहां पे लगाना होता है, वरना क्या होगा, आपकी औलाद जो है बुरी सोहबत में जाएगी, बुरी सोहबत का हिस्सा बनेगी, और फिर कयामत के दिन वो एक हसरत नहीं दो हसरतें जो है वो कह रही होगी कि काश के मैंने ऐसे लोगों को जो है वो दोस्त नहीं बनाया होता। और खाली वो ये हसरत नहीं कर रही होगी, बल्कि अपने वालदेन के ऊपर जो है वो लानतें भी कर रही होगी कि उन वालदेन ने भी जो है मुझे ये बातें नहीं समझाई और सिखाई नहीं, उन्होंने भी कोई इंतजाम नहीं किया, उन्होंने कोई फिक्र नहीं करी कि मैं बुरी सोहबत से बच सकता और मैं अच्छी सोहबत जो है वो इख्तियार कर सकती। लानत है ऐसे मेरे वालदेन के ऊपर। अल्लाह ताला से यही औलाद कहेगी कि इनको आप जहन्नुम के अंदर दाखिल करें। ठीक है, तो हम नहीं चाहते ना, ना अपना अंजाम ऐसा चाहते हैं, ना अपनी औलादों का अंजाम ऐसा चाहते हैं, तो हमें फिर इन बातों को सीरियसली लेना चाहिए, इनकी तकरार करनी चाहिए और आपस में बैठ करके फिर मशवरा करना चाहिए कि हम कैसे जो है वो अच्छी सोहबत का इंतज़ाम अपने और अपने औलादों के लिए कर सकते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको बात के समझने और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वा आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।